ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है एकांत की पुकार। टॉपिक की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे गांव में एक बुद्धिमान चीनी पिता रहता था। इस बुद्धिमान पिता का बहुत सम्मान किया जाता था। उसकी बुद्धि की वजह से नहीं, बल्कि उसकी दो संपत्तियां थी, शक्तिशाली पुत्र और घोड़ा। एक दिन घोड़ा कंपाउंड तोड़कर भाग गया। सारे पड़ोसी आए और बोले, किस्मत खराब है। इस पर बुद्धिमान पिता ने जवाब दिया, आप किस्मत को खराब क्यों कहते हो। कुछ दिन बाद घोड़ा अपने साथ 10 और घोड़े लेकर लौट आया। यह देखकर सभी पड़ोसियों ने कहा, किस्मत अच्छी है। इस पर बुद्धिमान पिता ने जवाब दिया, आप किस्मत को अच्छी क्यों कहते हो। कुछ दिनों के बाद जब शक्तिशाली पुत्र नए घोड़े पर सवारी करने की कोशिश कर रहा था, तो घोड़े ने उसे नीचे पटक दिया, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। सारे पड़ोसी आए और बोले, कितनी खराब किस्मत है। इस पर बुद्धिमान पिता ने पूछा, आप इसे खराब किस्मत क्यों कहते हो। लगभग एक सप्ताह बाद दुष्ट सैनिक उस गांव में आए और वे सभी स्वस्थ युवकों को घेर कर जबरदस्ती युद्ध में ले गए। सिर्फ वही युवक बच गया जिसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। सभी युवक युद्ध में मारे गए। जब यह खबर गांव में पहुंची तो सारे पड़ोसी उस पिता के पास आए और बोले, कितनी अच्छी किस्मत है। इस पर पिता ने जवाब दिया, किस्मत नहीं, यह किस्मत नहीं है। सारी चीजें मिलकर उन लोगों के भले के लिए काम करती है जो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जो हमें ऊपर से मुश्किल अनुभव होती है। सब चीजें अपने प्लान के अनुसार नहीं हो रही है ऐसा लगता है, परंतु अगर हम अपना हौसला बनाए रखें, अपने आप में आस्था रखें, तो हमें पता चलेगा कि हर एक वरदान में एक बोझ होता है और हर बोझ में एक वरदान होता है। हर काले बादल में एक सफेद लकीर होती है, सिर्फ हमें उसे तलाशना होता है। तो हमें भी 2 महीने से सारा भारत लॉकडाउन होने के कारण फुर्सत मिली है, एकांत मिला है। हर एक व्यक्ति जहां है वहां लॉक हो गया है, उसी वातावरण या घर में वही लोगों के साथ उसे रहना पड़ रहा है, चाहे पसंद हो या ना हो, बाहर नहीं जा सकता। वैसे हम ब्राह्मण भी अपने घर के एकांत में है, चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर पर है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन चारों तरफ से जो हमारा विस्तार बढ़ा हुआ था वो एकदम से सिमट कर सार में आ गया है। यह अचानक से आया हुआ एकांत कई लोगों को जेल के समान भी लग रहा है, शाप भी लग रहा है। किसी को अकेलेपन की फीलिंग भी आ रही है, जो उन्हें ग्रुप में जाने की, ऑफिस में जाने की, ब्राह्मणों को रोज मुरली के संगठन में जाने की या बाहर सेवा के लिए जाने की जो आदत पड़ी हुई थी, वो सारी बाहर की जो सेवाएं थी या बाहर जाना था वो सब बंद हो गया। किसी को भले शॉपिंग की आदत थी, जीवन आवश्यक वस्तु ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक वह बाजार से कुछ ले नहीं आते उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो अचानक सारा बंद हो गया और हमारी जो आवश्यकताएं कहो, मन का विस्तार कहो, सिमट कर चार दीवारी के अंदर बंद हो गया। कोई छोटे घर में बंद हो गया है, कोई बड़े घर में बंद हो गया है अपनों के साथ, तो कोई टेस्ट पॉजिटिव आने के कारण आइसोलेशन में 14 दिन हॉस्पिटल में पड़े हैं, तो कोई क्वारंटाइन में है, तो कोई डॉक्टर्स सिस्टर्स हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं और होटल में रह रहे हैं, तो हर जन अलग अलग तरीके से एकांत का अनुभव कर रहा है और अपने अपने तरीके से उसे बिताने की कोशिश भी कर रहा है। कईयों को तो दुख की फीलिंग आ रही है, कईयों को बड़ा मजा आ रहा है, तो हर एक का अपना अपना अनुभव है। जो घर में रहने वाले हैं, हर एक ने अपने शौक के अनुसार अपना समय बिताना शुरू कर दिया। कोई कोई कहते हैं कि हमको नींद ही नहीं मिल पाती थी, बहुत काम का बोझा होता था, तो किसी ने कहा कि हम 16 घंटे सो रहे हैं। कोई कोई है तो जिम कर रहे, 2-2 घंटे जिम कर रहे, एक्सरसाइज कर रहे। कहते घर में जिम था लेकिन कभी इतना समय नहीं मिला, तो अभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसमें टाइम दे रहे, कोई प्राणायाम कर रहे, कोई तो दिन भर टीवी देख रहे हैं मनोरंजन के लिए, कोई सोशल मीडिया पे बिजी है, फेसबुक व्हाट्सएप पे दिन भर इंटरनेट पर लगे हुए हैं, कोई बहने हैं जो रेसिपीज ट्राई कर रही है, अलग अलग रेसिपीज निकाल कर बनाकर वो सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के सामने डाल रही है, कोई तो आराम पसंद बन गए हैं बस खाना पीना और सोना, उसके कारण फिर जो साथ वाले हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है घर में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लोड आ गया, क्योंकि नौकर चाकर नहीं है या कोई मदद करने वाले नहीं है, सेंटर पर भी कई बार माताएं आती है तो बहुत सेवा करके जाती है लेकिन अभी कोई नहीं आ रहा है, तो कईयों के फोन आते हैं, इतनी आदत न होने के कारण हाथ पैर दुखना, पीठ दुखना, ऐसे प्रॉब्लम्स भी बहुत महिलाओं को हो रहे हैं, फिर ऐसे में कोई पारिवारिक हिंसाचार भी बढ़ रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर, इस प्रकार से झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं और कई मामले पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, भाई भाई के झगड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमने सुना कि पुणे में एक कलेक्टर ने इतना तक डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई पति ऐसा कोई हिंसाचार करता है, घर में कोई परेशान करता है तो उसको क्वारंटाइन कर देंगे 14 दिनों के लिए, और ऐसा उन्होंने किया भी। कोई कोई अपने शौक पाल रहे हैं जो कभी कर नहीं सके तो अभी बहुत समय मिला है तो उसको पूरा कर रहे हैं, कोई अपने व्यस्त रूटीन के कारण डाइट नहीं कर पा रहे थे तो अभी वो वेट लॉस के लिए डाइट कर रहे हैं, अलग अलग नेचुरल आहार या कीटो डाइट, ऐसे अलग तरह से अपने आप को समय देकर वेट रिड्यूस करना चाहो या अपना शुगर कंट्रोल करना चाहो कर रहे हैं और अलग अलग तरह से अपना समय बिता रहे हैं। हमने इतना तक सुना कि एक पुलिस भाई ड्यूटी पर जाता है और वहां पर कुर्सी डालकर कविताएं लिखता रहता है और वो कविताएं ग्रुप पर डालता रहता है, एकदम फेमस हो गया। तो ऐसे ऐसे नई नई चीजें भी कोई सीख रहा है, किसी को म्यूजिक सीखने की बहुत ये थी, इच्छा थी कई बचपन से, लेकिन जीवन के रूटीन में नहीं सीख पाए तो वो म्यूजिक सीख रहे, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से अपना समय सब बिता रहे हैं। और जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं तो वो आइसोलेशन में है और कई दूसरे उनके कॉन्टैक्ट वाले भी क्वारंटाइन में है, तो बेचारे 14 दिन हॉस्पिटल में या किसी एक बिल्डिंग में उनको रखा जाता है, तो उनका तो जैसे लाइफ नर्क के समान बन गया है, इतना ज़्यादा एकांत जैसे उनको खाने पर आ रहा है। एक तो डर भी है, बीमारी का बहुत ज़्यादा डर है, और दूसरा अपनों से दूर रहने का जो उनको सज़ा मिल रही है और अपनों से बिछड़ने का भी उनको डर है, और खास करके उन्हें कोई पूछता नहीं है। वहां पर भी कई बार ऐसा होता है कि स्वच्छता कर्मचारी आते हैं लेकिन रूम में नहीं आते, या खाना भी देते हैं उनको तो बहुत दूर से रख करके जाते हैं, तो हम कई पेशेंट्स के ऐसे फोन पर अनुभव सुनते हैं तो बहुत रहम आता है। वो कहते कि एकदम करीबी रिश्तेदारों ने भी हमको फोन करना छोड़ दिया, कोई पूछता नहीं है, और फिर बड़े बड़े घर के लोग थे लेकिन उनको समझ में आया कि सचमुच ऐसे समय पर हमें कौन काम में आता है, तो वो रियलाइज कर रहे कि पैसा सब कुछ नहीं है या जो हमने सब साधन जुटा के रखे थे झूठी मानशान में अटके हुए थे, तो उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि सचमुच अपने कौन है, पराए कौन है, और एक भगवान के तरफ उनका ध्यान जा रहा है। तो ऐसे में वो अपने उनको बेहद का वैराग्य भी आ रहा है और परमात्मा की ओर उनका ध्यान भी जा रहा है, और वो छोटे छोटे कामों में अपना समय भी व्यस्त कर रहे हैं, जैसे अपने हाथ से वो सारे कार्य कर रहे, कपड़े धोना, रूम साफ करना, और ऐसे समय पर उनको अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, उनको जो मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे कहा जाता है कि फिजिकल केयर इज अ साइकोलॉजिकल केयर, तो उनके अपने भी उनकी फिजिकल केयर नहीं कर सकते हैं तो उनको आत्मनिर्भर भी बनना पड़ रहा है, अपने सारे कार्य अपने हाथ से करना और अपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना, इतना सारा उनको कर रहा है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ जो भाई है हमारे अभी नए नए ज्ञान में निकले हैं म्यूजिकल एक्सरसाइज के कारण, तो वो भाई भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन वहां पर जाकर उसने सिर्फ अपना नहीं सोचा, बल्कि जाकर के उसने वहां के लोगों को एक्सरसाइज के द्वारा, जो रोते हुए लोगों को हंसाया, उनको खुशी दी, उनकी सेवा की, तो जैसे दूसरों का उस एकांत में वो भाई सहारा बना, तो उसका भी अनुभव हमें सुनने को आ रहा है। तो बहुत खुशी होती है कि इतने संकट के समय में दूसरों का सहारा बनना, ये बहुत बड़ा कार्य है। और जो भी घर में है, बंद है, वह भी अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर अपने सेफ्टी के सारे उपाय कर रहे हैं, जैसे अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग दवाइयां भी ले रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, और न किसी से मिलना है, न कोई घर में आता है। अगर कोई गलती से आ भी जाता है घर में, तो कितनी परहेज रखते, कितना ध्यान रखते हैं कि डोर बेल से लेकर दरवाजे की लैच से लेकर जहां पर वह व्यक्ति बैठा था, उस कुर्सी को, जहां पर उसने पर्स या मोबाइल रखा था, उस जगह को भी हम सैनिटाइज कर लेते हैं कि वायरस की घर में एंट्री ना हो। तो कितनी हम परहेज रखते, कितनी हम ध्यान रखते हैं। तो हमें भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ रहा है, एक सामाजिक अंतर सबसे हम रख रहे हैं कि किसी से भी बात करना है, किसी से भी मिलना है, तो 2 फीट की दूरी से हमें उससे मिलना पड़ रहा है। तो ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है, ये हम मेंटेन भी कर रहे हैं। तो अंतर शब्द के तो बाबा 2 अर्थ बताते हैं, एक तो अंतर माना डिस्टेंस, और दूसरा अंतर माना आपका अंतर, अंतर्मन। तो जैसे हमारे घर में कोई प्रवेश कर लेता है तो हम इतना ध्यान रख रहे हैं, तो हमारे अंतर में भी अगर कोई प्रवेश कर लेता है, दिन भर में ऐसा होता है कि कई आत्माएं प्रवेश कर लेती है, तो 2 बातें होती है, एक तो हम उसकी कमजोरी को देखते हैं, जिसे बाबा कहते हैं जिसे किसी के अगर अवगुण देखते हैं तो वह आपके अंदर प्रवेश कर लेगा, तो बार बार उसकी कमजोरी का चिंतन करते रहते हैं, तो उसकी वह जो कमजोरी है वह हमारे अंदर आ जाती है। या फिर किसी के गुण से प्रभावित हो जाते हैं, किसी ने कुछ अच्छा कहा या कुछ अच्छा किया तो उसी का चिंतन करते रहते हैं, और उसमें ही फिर बाबा को भूल जाते हैं और बाबा के याद कम हो जाती है। तो ऐसे समय पर हमें जो हमारे अंतर में कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई आत्मा आ जाती, कभी कोई चीज आ जाती है कि भल हम योग में बैठे हैं लेकिन उस व्यक्ति के बारे में, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, उससे हम उस समय एकांत मिलकर भी हम एकांत में नहीं है, तो ऐसे समय पर हम क्या करें कि ज्ञान के जल से और याद के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से ऐसे समय पर मन को भी सैनिटाइज करें, और वो जो व्यक्ति है, वस्तु है या वैभव है, उससे अपना जो आसक्ति है, आकर्षण है, उसको दूर करें। जैसे कहा भी जाता है एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, और हम देखते भी है कि जैसे कोई खाली घर होता है जहां पे कोई नहीं रहता है, तो उस घर में चारों तरफ से कॉकरोच, छिपकली, चींटियां घर में घूमने लगती है। तो अभी भी हमें आवश्यक विचार हमारे कम हो गए हैं, जैसे हम कभी मौन पकड़ते हैं, मौन में रहने का संकल्प लेते हैं, तो अपने आप हमारे संकल्प भी कम होने लगते हैं कि हमें बोलना ही नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, किसी को कार्य नहीं बताने हैं, तो अपने आप मन के संकल्प भी कम चलने लगते हैं। तो अभी तो हमारा यह माइंड थोड़ा फ्री है, बाहर के कार्य से फ्री है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में काफी सारे जो बीमारियां है, कीटाणु है, वह अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। जो बीमारियां, जो विकार पहले आज दिन तक कभी हमें दिखे नहीं थे, रोज के कार्य में हमारा कभी उनके तरफ ध्यान भी नहीं गया था, वह अंदर की बीमारियां भी ऐसे समय में कईयों की उछल खा रही है। जैसे बाबा कहते हैं कि कोई दवाई करते हैं तो बीमारी उछल खाती है, तो अभी जैसे एकांत मिला है, फुर्सत मिली है, तो हमारे अवगुणों के तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे कभी घर हमारा बड़ा है तो समझो खाली समय है, तो हम क्या कर रहे, कोना कोना घर का साफ कर रहे, कहाँ क्या रखा है वो देख रहे हैं, उसको ठीक से रख रहे हैं, स्वच्छता कर रहे हैं। बाहर जाना ही नहीं है तो समय बिताने के लिए कर्मणा सेवा कहो, हम सारी चीजें बहुत धीरज से, स्वच्छता से, शांति से कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने घर को स्वच्छ कर रहे हैं, वैसे यह कर्मयोग करते करते हमारी अंदर की क्लीनिंग भी चलती रहे, अंदर की चेकिंग भी चलती रहे। जैसे हम चेक करें कि हमारी बुद्धि किस चीजों की तरफ भागती है, किस चीज का आकर्षण है, किस व्यक्ति में मोह है, किस खाने की चीज में आसक्ति है, ऐसी बहुत कुछ हम अपनी चेकिंग, आत्मावलोकन इन दिनों में कर सकते हैं। जैसे हमें ये बीमारियां, ये हमारी कमजोरियां सामने आती है, तो उन पर काम करना हमें बहुत इजी हो जाता है। तो यह बहुत गोल्डन चांस हम ब्राह्मण आत्माओं को मिला है कि इस समय को हम स्वयं प्रति लगा रहे हैं, जैसे जो भी हमारे जो कमजोरियां है उनसे मुक्त होने के लिए अभी ये जो हमें समय मिला है उसको हम सफल करें। जैसे बाबा ने अभी की अव्यक्त मुरली में कहा कि आप इस दुनिया के सुख शांति के श्वास हो, आपको ढूंढने के लिए आएंगे, लेकिन पहले स्वयं को संपन्न बनाओ। तो स्वयं को संपन्न बनाने के लिए ये बहुत बड़ा चांस हमें ड्रामा ने दिया है। मैं तो कहती हूँ कि इस समय की जितनी महिमा करे उतनी कम है, क्योंकि इतना समय फुर्सत का शायद ही किसी को लाइफ टाइम में मिला होगा। वैसे भी कहा जाता है कि एकांत एक साधारण व्यक्ति के लिए कैद खाने के समान होता है, योगी के लिए आत्म उन्नति का समय होता है और ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। तो हम ज्ञानी योगी बाबा के बच्चों के लिए तो ये समय तो स्वर्ग के समान ही है कि जो हम रोज की साकार मुरली भी कई बार हमको 2-3-4 बार पढ़ना सुनना पॉसिबल नहीं होता है, तो अभी इतना समय मिला है तो हम रोज की साकार मुरली भी रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, किसी को सुनाते भी है, तो हमारा रिवीजन भी हो रहा है। तो उसी के साथ रोज अव्यक्त मुरली जरूर पढ़े। अव्यक्त मुरली में इतना खजाना होता है, इतने ज्ञान के गुह्य राज होते हैं, कई बार हम हमारे व्यस्त शेड्यूल के कारण यह रोज नहीं पढ़ पाते, लेकिन अभी समय मिला है तो हम कम से कम सवेरे और शाम को एक एक अव्यक्त मुरली जरूर पढ़े। मुझे तो ऐसा लगता है अव्यक्त मुरली एक ड्राई फ्रूट के समान है, जैसे हम ड्राई फ्रूट एक मुट्ठी भर खाते हैं, ज्यादा उसको पचा नहीं सकते, वैसे सवेरे एक मुरली अगर हम पढ़ते हैं तो उस पर हमारा चिंतन चले, उसका स्वरूप बनने का हम योग में भी कोशिश करें और दिन भर कर्म योग में भी उसको यूज करें, तो वो धारणा युक्त पॉइंट्स हमें धारण हो जाती है। फिर उसी के साथ हम बाबा के बहुत अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, जैसे भाग्य विधाता है, वंदे मातरम है, प्रभु प्यार के परवाने हैं, इतने सुंदर हमारे जो महारथी बाबा के बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, उनके अनुभव है, साकार की यादें हैं, तो उन्हें पढ़ करके हमें दूसरों को भी सुनाना है, या कभी कोई फोन आ जाता है तो उनको भी हम सुना सकते हैं, तो ज्ञान से उनकी सेवा भी कर सकते हैं। और ये जो भाग्य विधाता, जैसे बाबा कहते ये तो भागवत है, तुम गोप गोपियों का ये वर्णन है, तो सचमुच जब हम वो पढ़ते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि वो हमारे साथ ही हो रहा है, हम ही तभी बाबा के साथ थे, हमें ही बाबा ने ज्ञान सुनाया, हमें ही बाबा ने गोदी में लिया, या हम ही साकार में बाबा से मिले। तो एक एक अनुभव ऐसे पढ़ करके रोमांच खड़े हो जाते हैं। तो हम ब्राह्मण अवश्य अगर एक बार पढ़ा भी है तो भी बार बार उसको पढ़ते हैं तो वही अनुभव हमें आता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं और बाबा की याद भी सहज हो जाती है और बाबा के लिए अंदर से बहुत प्यार उमड़ता है। और ज्ञान तो हम वैसे सुन लेते हैं, यूट्यूब पे मुरली सुन लेते हैं, व्हाट्सएप पे मुरली पढ़ लेते हैं, और आधुनिक साधन भी बहुत अभी निकले हैं, तो बहुत सारे जूम मीटिंग भी चल रहे हैं, वेबिनार भी चल रहे हैं, तो इन साधनों को, साइंस के साधनों को अपनाकर हम अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर ज्ञान का डिस्कशन कर सकते हैं, मनन चिंतन कर सकते हैं, एक एक मुरली के ऊपर कुछ पॉइंट्स निकालकर उसका निचोड़ निकालकर एक दूसरे को सुना सकते हैं। और कई बार हमें बाबा को पत्र लिखने की ऐसी इच्छा होती है लेकिन फिर कभी लेट हो जाता है तो नहीं लिख पाते हैं, तो अभी ये जो समय हमें मिला है, हम बाबा को रोज पत्र जरूर लिखें, तो उससे हमारा मन भी खाली हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा और हम आराम से सो सकेंगे, क्योंकि चारों तरफ इतना निगेटिविटी का वातावरण है, वाइब्रेशंस इस दुनिया के बहुत खराब हो चुके हैं। इसलिए कई बाबा के बच्चों को भी नींद ना आना या डिप्रेशन जैसी फीलिंग, लो फीलिंग आ रही है। इसलिए तो बाबा ने अभी सीजन की जो मुरली चली उसमें बाबा ने कहा कि आप 12 बारी निराकार और 12 बारी फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। तो बाबा तो जैसे जानी जानन हार है, जानते थे कि आगे ऐसा समय आने वाला है कि बच्चे अगर इसी दुनिया के समाचार में, इसी दुनिया के चिंतन में रहेंगे तो बहुत उनको दुख मिल सकता है, या उनके सामने पेपर आ सकते हैं, या उनको थोड़ा सा दुख की लहर आ सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बस निराकारी स्थिति में और फरिश्ता रूप स्थिति में स्थित रहो, तो उससे अपने आप इस दुख की दुनिया से हम दूर हो जाते हैं और इसका सेक हमें नहीं लगता है। और बीच बीच में बाबा ने ये भी कहा कि अपनी जीवन कहानी लिखो या अपनी कुछ भी जो गलतियां है बाबा को लिख करके दे दो। तो अगर हमें कई सालों से ये इच्छा होगी लेकिन हम लिख नहीं पाए होंगे, तो जरूर इस समय में, एकांत के समय में हम बाबा को जरूर लिखें, जीवन कहानी भी लिखे। जैसे बाबा कहते हैं महात्मा गांधी, इन लोगों के कितने एडिशंस निकलते हैं, तो हमारे भी हर एक बीके का जीवन इतना प्रेरणादायक है। मुझे तो जिनके भी मैं अनुभव सुनती हूँ, मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति का जो अनुभव है वो बहुत प्रेरणादायी है, दुनिया के लिए भी और बाकी जो नए नए बाबा के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायी हो सकती है। भले पूरी जीवन कहानी नहीं, लेकिन कुछ हमारे जीवन में प्रेरणादायक अगर कुछ प्रसंग है जिससे दूसरों को कुछ सीख मिले, वो हम जरूर लिखें या सोशल मीडिया पर भी डाल सकते, इससे बहुतों को मार्गदर्शना भी मिलेगी। फिर कई बार बाबा कहते बड़े लोग जो होते हैं वो डायरी लिखते हैं रात को, तो सचमुच ये आदत भी बहुत अच्छी है। हमें बहुत साल पहले ये आदत थी, तो जब भी हम ये कुछ सालों बाद वो डायरी पढ़ते हैं तो हम उस समय में पहुंच जाते हैं, उस समय का हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको हम जानते हैं। तो ऐसे समय में हमें समय मिला है तो इस समय की हम डायरी भी लिख सकते हैं, पोता मेल भी लिख सकते हैं, तो उस समय को हम सफल कर सकते अलग अलग तरीके से। फिर कई बच्चे स्वमान भी लिख रहे हैं, 108 बार स्वमान कई भाई बहन लिख रहे हैं, तो अभी यह समय हमें मिला है तो उस स्वमान का स्वरूप बनने के लिए हम यह मार्ग भी अपना सकते हैं। अलग अलग क्रिएटिविटी से ज्ञान के पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम अलग अलग तरीके भी इस समय में अपना सकते हैं। जैसे हम गांधीनगर सेंटर पर कई बार जाते हैं तो वहां पर जो लगे हुए अव्यक्त मुरलियों के पैराग्राफ है फ्रेम करके लगाए हुए, वो बहुत अच्छे लगते हैं और एकदम से स्थिति अच्छी बन जाती है और बाबा कि वो पॉइंट्स हमारे मन में चलना शुरू हो जाते हैं और व्यर्थ समाप्त हो जाता है। तो हम भी अगर हमारा सेंटर बड़ा है, घर बड़ा है, तो इस तरह से कुछ छाट करके ऐसे पैराग्राफ निकाल करके जब लॉकडाउन खुलता है तो उस समय घर में फ्रेम करके लगा सकते हैं। ज्ञान के साथ साथ आजकल सारे योग भी बहुत कर रहे हैं, बैठ करके घंटों घंटों योग कर रहे हैं, भट्टियां भी चारों तरफ बाबा के बच्चों की चल रही है। तो ऐसे समय पर हम भी अपने आप को अगर कर्मयोग में बिजी पाते हैं तो हम भी शांतिधाम और सुखधाम को कर्मयोग में याद करें, क्योंकि बाबा ने हमें कई सालों से बाबा हमें हर मुरली में कहते हैं कि इस दुख की पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को भूलो, लेकिन हमें कई बार बहुत हम इसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस समय जो माहौल बना है, जो इतना निगेटिविटी का वाइब्रेशन चारों ओर है, तो ऐसे समय में हम जितना समय अपने घर को याद करेंगे और स्वर्ग को याद करेंगे तो हम बहुत अच्छी फीलिंग में रह सकते हैं, पॉजिटिविटी में रह सकते हैं। और एक अनुभव हमें ये भी आता है कि मधुबन को अगर हम याद करते हैं, चार धाम की ड्रिल तो करते ही है लेकिन सिर्फ बुद्धि को मधुबन में भी लेकर जाते हैं, जैसे शांति स्तंभ पर, तो वहां पर तो हमें हमेशा जैसे बाबा खड़े ही नजर आते हैं। तो मधुबन को याद करके भी हम बहुत हल्की अवस्था में रह सकते हैं, खुशी में रह सकते हैं। तो बार बार हम अपनी बुद्धि को पांडव भवन में लेकर के जाए, शांतिवन में डायमंड हॉल में लेकर के जाए, तो वो भी बाबा मिलन का हम नजारा बार बार सामने लाते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कर्मयोग में हमें अनुभव हो सकता है। फिर बैठ करके तो हम नुमार शाम योग करते हैं, और मुझे लगता है मनसा सेवा तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अपने शहर के लिए, अपने जैसे स्टेट के लिए, भारत के लिए और विश्व के लिए सारे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आत्माओं को सकाश देना, शांति देना, शक्ति देना, यह मनसा सेवा भी सारे कर रहे हैं। और योग में हम फिर अलग अलग अभ्यास कर सकते हैं, जैसे पांच स्वरूपों का अभ्यास है तो एक गुण को लेकर के हम पांच स्वरूपों का अभ्यास करें, जैसे कि हमारा एक गुण है ज्ञान, तो ज्ञान इस गुण को लेकर के हम परमधाम से लेकर फरिश्ता स्वरूप तक आए, कि जैसे कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा परमधाम में ज्ञान सूर्य की किरणें प्राप्त कर रहा हूँ, फिर आदि स्वरूप में ज्ञान की प्रालब्ध भोग रहा हूँ, फिर पूज्य स्वरूप में ज्ञान वीणा हाथ में लिए मैं सरस्वती बुद्धि का वरदान दे रही हूँ, फिर मैं ब्राह्मण आत्मा ज्ञान सागर से ज्ञान अमृत पान कर रही हूँ, फिर मैं मास्टर ज्ञान सागर फरिश्ता विश्व की आत्माओं के ऊपर ज्ञान की किरणें बरसा रही हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके से हम अभ्यास कर सकते हैं। और इस समय समय की जो मांग है, जो समय की पुकार है, तो इस समय है दुखियों की पुकार सुनकर उन पर रहम करना, क्योंकि बहुत बेचारे दुखी है, बहुत सहन कर रहे हैं, अनेक प्रकार के पेपर इन आत्माओं के सामने आ रहे हैं, और मुझे तो लगता है बाकी सारे विकार जैसे मर्च हो गए इस समय में, और सबसे बड़ा पेपर आ रहा है मोह का पेपर, क्योंकि कितने लोग अपने अपनों से दूर है, किसी को ड्यूटी के कारण, किसी के लॉकडाउन के कारण अपने अपनों से दूर रहना पड़ रहा है, या अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसी समय उसको सबको छोड़ करके जाना है, तो उस समय उनको मोह ये विकार बहुत बहुत दुख दे रहा है। तो इस समय हम बाबा के बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्थित होकर के खास नष्ट मोह स्मृति स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो आत्माओं को भी नष्ट मोह होने के लिए बहुत बहुत मदद मिल सकती है। और अगर हम ही मोह में फंसे हैं, लौकिक रिश्तेदारों को याद कर रहे या किसी को याद कर रहे हैं, तो हम मनसा सेवा ऐसे समय में उन आत्माओं की नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कई मुरलियों में हमें कहते हैं कि आपको दुखियों की पुकार सुनाई नहीं देती है कि हे हमारे इष्ट देव आओ और हमें मदद करो। तो अभी ये समय है कि इस समय चारों तरफ से दुखियों की पुकार जैसे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे समय बाबा कहते हैं कि आपको वो उलहने न दे तो आपको फूलों की माला पहननी है, न कि उलहनों की। तो इस समय हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम चलते फिरते भी उन आत्माओं की सेवा करें, उनके ऊपर रहम करें, और हमारा पूरा ही योग इस समय तो मुझे लगता है कि विश्व सेवा के प्रति हो। और कई बार विश्व सेवा में हमारी डबल कमाई हो जाती है, स्व की भी सेवा हो जाती है और दुखी आत्माओं को हम जो दान देते हैं उन आत्माओं की रिटर्न में हमें जो दुआएं मिलती है उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। किसी भी पद पोजीशन वाली कौन सी भी आत्माएं बहुत ज्यादा डर में है तो उन्हें हम निर्भयता में स्थित होकर के उनको ऐसी शक्ति की शांति की किरणें दे तो वो अशांत आत्माएं भी शांति का अनुभव करे। और इस समय मैं कहती हूँ हर एक आत्मा को अष्ट शक्तियों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए बाबा कहते शक्तियों का दान करो, शक्तियों का दान करो। तो एक एक शक्ति को अगर हम देखते हैं तो हर एक शक्ति की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हर एक आत्मा को है। जैसे विस्तार को संकीर्ण करने की जो शक्ति है, जैसे इस समय में जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरीके से इन शक्तियों की जरूरत आज आत्माओं को पड़ रही है। जैसे अचानक से सारे कार्य बंद हो गए तो जो देह का विस्तार था, देह के संबंधों का था, व्यापार का था, नौकरी धंधे का जो था, वो एकदम से विस्तार सार में आ गया। तो ये सार में आना भी कई आत्माओं को वो सहन नहीं हो रहा है, उनको वो उसको फेस नहीं कर पा रहे, उनके कार्य के बिना रहना उनको बहुत मुश्किल अनुभव हो रहा है। तो ऐसे समय में उन्हें इस शक्ति की आवश्यकता है। जैसे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि आपको बीच बीच में अपने कर्मेंद्रियों को समेट कर आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तो अगर हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो उन आत्माओं को भी मदद मिलेगी। फिर सहन शक्ति के पेपर भी अनेकों के सामने आ रहे हैं। कितनों के अनुभव हम सुनते हैं कि जैसे ड्यूटी पर उनको जाना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, जैसे हॉस्पिटल में कोई नर्स है तो 8-8 घंटे उनको वो ड्रेस पहन के पीपी पहन करके रहना पड़ता है। तो वो आकर के रात को रोते हैं, अनुभव सुनाते हैं कि हम अपनों से दूर भी रहते हैं, इतना सहन करना पड़ रहा है, तो बहुत उन पर रहम आता है। और कई जगह पे तो एक साथ सबको रहना है तो कितना सहन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो आधे लोग बाहर रहते, ड्यूटी पर रहते, कोई स्कूल में रहते बच्चे, लेकिन अभी एक साथ सब घर में लॉक हो गए तो सबको सहन शक्ति के भी पेपर आ रहे हैं। और कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर्स है, या कोई सफाई कर्मचारी है, पुलिस है, अभी बहुत सारा पुलिस फोर्स आया है, तो वो बेचारे अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पे कहाँ उनको मंगल कार्यालय में रखा गया है, जैसी स्थिति है वैसे वहां उन्हें रहना है, जैसा खाना उनको मिल रहा है वैसे खाना वो खा रहे, तो उनको हर तरह से सहन करना पड़ रहा है। फिर समाने की शक्ति कि सबको एक साथ रहना है तो हर एक के अवगुण को भी समाना पड़ रहा है, और जिसके अंदर यह शक्ति नहीं वह व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा है और दुख बहुत है। किसी किसी कोई तो मजदूर है बेचारे, जो रोज कमाते और खाते हैं, तो उनको खाने पीने को भी बहुत तकलीफ है, तो बहुत ज्यादा दुख उनको हो रहा है। तो ऐसे समय में समाने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कोई इस समय में जैसे धर्म के नाम पर भी लड़ रहे हैं, जैसे कोई बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट भेज रहे तो वो कहते आपके यहाँ के पेशेंट हम नहीं लेंगे, तो समाने की शक्ति की कमी है उसी के कारण। जैसे कोई कह रहे कि हमारे कॉलोनी के अंदर होटल में डॉक्टर ना रहे या कोई हॉस्पिटल का स्टाफ ना रहे, ऐसे कई मामले हमें सुनाई दे रहे हैं कि जैसे लोग उन जिनसे मदद ले रहे उनको ही नहीं समा पा रहे हैं, उनके मन के अंदर, उनके एरिया के अंदर उन्हें वो लोग नहीं चाहिए। तो वो सोचो उन लोगों को कितना दुख होता होगा कि जिस समय कठिनाई थी, तकलीफ में हमने इनको मदद की और इस समय में वो लोग हमसे इतना दूर भाग रहे हैं। तो जैसे बाबा भी कहते हैं जहां पर आपको बोझ अनुभव हो तो उस बोझ के ऊपर बाबा को रख दो, तो बाबा तो सागर है, तो व्यर्थ को एक साइड कर देगा और आपको कचरा जो भी है, आपकी जो भी तकलीफ है उसको साइड में कर देगा और आपकी जो भी तकलीफ है उसको संभालेगा। तो ऐसे आत्माओं को समाने की शक्ति की भी जरूरत है। फिर सामना करने की शक्ति भी सबसे ज्यादा इस समय जरूरी है, क्योंकि कितने आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं तो दुख के पहाड़ उन पर गिर रहे। पत्नी कहाँ एडमिट है, पति कहाँ एडमिट है, बच्चे कहाँ एडमिट है, और उसमें से किसी एक ने अगर शरीर छोड़ दिया तो उन पर बिचारों पर बहुत उनको दुख हो रहा है। इस समय उनके फोन आते हैं, उनके रिश्तेदारों के फोन आते हैं कि वो कंटिन्यू रो रहे हैं, इनको आप कोर्स कराओ, इनको ज्ञान सुनाओ, इनको मेडिटेशन कराओ। तो इस समय तो हम उनकी मनसा द्वारा सेवा ही कर सकते हैं। ऐसे समय वो ज्ञान सुनने के भी लिए भी उनकी इतनी मानसिक अवस्था नहीं होती है, क्योंकि बेचारे बहुत दुख में होते हैं। फिर समेटने की शक्ति, जैसे कोई पेशेंट अगर पॉजिटिव आ जाता है, उसको अगर फोन आ जाता है या कॉरपोरेशन की गाड़ी एम्बुलेंस आ जाती है लेने के लिए, तो उस समय उनको वो लोग कहते कि आप आवश्यक कपड़े लो और चलो। तो जैसे उन्हें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह से स्वयं को समेटना है। जैसे एक फोटोग्राफर हमें अनुभव बता रहा था कि जैसे टेस्ट पॉजिटिव आया, सब घर वालों को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये व्यक्ति अभी फिर से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उनको उसमें दुख महसूस होता है कि पता नहीं ये बीमारी में क्या हो जाए, एकदम अनिश्चितता लगती है। तो उस समय वो कैसे अपने मन को समेटे, क्योंकि आत्मा के अंदर शक्ति ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा दुख का अनुभव उस समय वो आत्मा करती है। तो हम उनको शक्तियों की दान दे तो वो इस शक्ति को धारण कर सकते हैं। फिर निर्णय करने की शक्ति की भी जरूरत है। इस समय गवर्नमेंट को भी बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके डिसीजन सारी जनता के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और कई सारे डॉक्टर्स भी हैं जो शुरू शुरू में खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि प्रैक्टिस चालू रखे या बंद रखे, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आ जाता है तो हॉस्पिटल सील हो जाता है और स्वयं डॉक्टर और पूरा स्टाफ क्वारंटाइन में चला जाता है। तो ऐसे समय में निर्णय करने की शक्ति भी बहुत आवश्यक होती है। अलग अलग तरीके से किसी को बाहर भी जाना है तो उस समय निर्णय करने कि सचमुच इस बीमारी के सामने बाहर जाना जरूरी है, लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करना जरूरी है। तो आत्माओं को निर्णय करने की शक्ति की भी बहुत जरूरत है। फिर परखने की शक्ति, तो अभी जो परिस्थिति आई है तो उसमें व्यक्ति को अपने जो अपना जिनको कहते हैं वो उनको भी परखने परख पा रहे हैं कि सचमुच जिनको अपना अपना कह रहे थे, तो ऐसे समय में कौन काम में आता है कौन नहीं आता है। ऐसे समय में सबका इशारा एक बाबा की तरफ, भगवान की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में उनको कोई काम में नहीं आ रहा है। सब डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, अपने आप को बचाते हैं और सहयोग देना भी उनको बहुत मुश्किल अनुभव होता है। घर में भी स्थूल कार्य में सहयोग की जरूरत होती है, तो सारे जो कार्य है मिलजुल कर हर एक करे तो बहुत सबको मदद होती है। लेकिन हमने देखा कई जगह पे इस पर भी बहुत कौटुंबिक झगड़े हो रहे हैं कि कोई अपनी पत्नियों को मार भी रहे हैं, कुछ बोलचाल के कारण बहुत ज्यादा उनको सहन करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल में भी कोई स्टाफ है तो वहां पर भी वो एक दूसरे को सहयोग नहीं दे पा रहे। कई पेशेंट जो है वो जैसे हॉस्पिटल से भाग रहे हैं, जो गवर्नमेंट का स्टाफ है तो उनको भी परेशान करे, उनके तरफ से उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उसी कारण वो भी दुखी हो रहे हैं। डॉक्टर्स जो नर्सेस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उनको बहुत ज्यादा सहन करना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में सबको सहयोग की जरूरत है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको शक्तियों का दान दो, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके सारे विश्व के आत्माओं को इस समय में हर एक शक्ति की जरूरत है, इसलिए आपका जो दान है वो बहुत बहुत इस समय मदद करेगा। तो हम मनसा सेवा भी अवश्य करें, उसके साथ जैसे हमारी ये योग भट्टी भी है तो इसमें हमें कर्मयोग भी करना है। तो कर्मयोग में काफी सारे पेपर भी हमारे सामने आते हैं, तो इस समय हमें अनेक अनेक गुणों की भी जरूरत है, जैसे सहनशील भी बनना है, हर्षित मुख भी बनना है और एकाग्रता से हमें सारी एकाग्र होकर के दुनिया को हमें मदद भी देनी है, और फ्लेक्सिबिलिटी, ये गुण की बहुत जरूरत है, क्योंकि एकदम से हर एक की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। जो कुर्सी पर बैठ करके ऑर्डर देते थे या आराम से उनका प्रोफेशनल काम करते थे, तो उनको आज घर के काम करने पड़ रहे। तो ये जो आपके एडजस्टमेंट पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसे बाबा कहते हैं जो गोल्ड होगा वो मोल्ड होगा, तो इसकी भी परीक्षा इस समय आ रही है। तो जो बाबा के बच्चों ने स्वयं को ऐसे मोल्ड किया होगा तो उनको तो बहुत ईजी लगता है, वो बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन भी बनाते हैं, सबको खिलाते भी है। बाबा के याद में जो पहले समय नहीं मिलता था कि इतना आराम से प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाए, बाबा को भी भोग लगाए और सबको भी खिलाए। हर एक कार्य जैसे रोज के रूटीन के कारण जल्दी जल्दी में होता था तो अभी आराम से कर रहे हैं। तो ये दैवी गुणों की भी हमें बहुत जरूरत पड़ रही है। जैसे संबंधों में अगर कहीं टकराव आता है तो उस समय हम चेक करते हैं कि हमारे सारे संबंध मधुर हो, हमारे बोल जो है वो मीठे हो, किसी को टॉन्ट मारना, दुखदाई बोल बोलना, किसी की से ईर्ष्या करना, इन बातों से हम अपने आप को दूर रख पा रहे हैं, क्योंकि रोज के रूटीन में धीरज नहीं होता है, जल्दी जल्दी में काम करना होता है तो हम जोर से बोल देते हैं, किसी को डांट भी देते हैं, लेकिन इस समय हमें बहुत धीरज से सोचना है फिर बोलना है। क्योंकि बाबा ने अभी की मुरली में भी कहा कि पवित्रता माना आपके संकल्प बोल कर्म में श्रेष्ठ भाव हो, वही सच्ची पवित्रता है। तो ऐसी सच्ची पवित्रता हम हर एक संकल्प में अपने धारण करें और अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ चरित्रवान बनाए। तो ये जो समय हमें मिला है, तो जैसे एकांत माना एक के अंत में खो जाना, तो हमें सारे अपने जो अवगुण हैं उस सागर में समा देने हैं और बाबा के प्रेम में, प्यार में, शक्तियों में स्वयं को खो देना है, अपने सारे बीमारियों को, टेंशन को स्वाहा कर देना है। अच्छा, ओम शांति।